आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मैमुना। इसरो आज रात श्रीहरिकोटा में अपने खलाई स्टेशन से दो सैटेलाइट छोड़ेगा ताकि मदार में खलाई जहाजों की डॉकिंग और अनडॉकिंग के अमल का मुजाहिरा कर सके। वजारत दिफा ने एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन प्लग की तामीर और इलेक्ट्रॉनिक हैवीवेट टारपेडो से इसके इर्तबात के लिए 2,867 करोड़ रुपए की मालियत के दो मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने सनत, सेहत और तालीमी शोबों के माहिरीन और नुमाइंदों के साथ बजट से पहले की छठी मुशावरती मीटिंग की सदारत की। भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इस साल खातिरख्वाह तरक्की हुई जो इसके आलमी पावर हाउस बनने के अमल की जानिब इशारा करती है। और अमरीका ने यूक्रेन के लिए फौजी पैकेज समेत तकरीबन 6 अरब डॉलर की इमदाद का ऐलान किया है। अब खबरें तफसील से। खलाई तहकीक के भारतीय इदारे इसरो ने खला में डॉकिंग तजुर्बे से मुतालिक मिशन, जिसका नाम स्पडेक्स है, पर अमल आवरी के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इस मिशन के दौरान मदार में खलाई जहाज की डॉकिंग और अनडॉकिंग का मुजाहिरा किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से आज रात पीएसएलवी C-60 रॉकेट के जरिए इसको खला में भेजा जाएगा और दो सैयारचों STX-01, जिसको चेजर का नाम भी नाम दिया गया है, और STX-02, जिसको टारगेट का भी नाम दिया गया है, 55 डिग्री के झुकाव पर तकरीबन 66 दिन के मकामी वक्त के दौरानी के साथ 470 किलोमीटर के एक गोल मदार में पहुंचाएगा। टारगेट और चेजर सैटेलाइट्स 10 से 20 किलोमीटर के फासले पर एक ही मदार में पहुंचाए जाएंगे। इस स्पडेक्स मिशन की कामयाबी के बाद भारत उन मुल्कों में शामिल हो जाएगा जो कामयाबी के साथ इंसानी खलाई परवाजों और सैटेलाइट के सर्विसिंग मिशन अंजाम दे पाते हैं। ये कम खर्च वाली टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल मिशन है जिससे भारत चांद पर अपने मिशन और अपना ऐसा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन तैयार करने की मंसूबा साजी कर सकेगा, जहां सैटेलाइट को ठहराया जा सके और फिर उन्हें जमीन पर वापस लाया जा सके। वजारत दिफा ने आज तकरीबन 2,867 करोड़ रुपए की मालियत के दो मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं। ये रकम DRDO AIP सिस्टम के लिए एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन प्लग AIP की तामीर और इसे भारतीय आबदोजों से मरबूत करने और कालवरी क्लास की आबदोजों के इलेक्ट्रॉनिक हैवीवेट टारपेडो EHWT से मरबूत करने के लिए मुख्तस की गई है। दोनों माहिदों पर दिफाई महकमे के सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में नई दिल्ली में दस्तखत किए गए। एक बयान में वजारत ने बताया कि AIP प्लग बनाए जाने और इसे मरबूत किए जाने से मुतालिक माहिदा मेजोगन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के साथ तकरीबन 1,990 करोड़ रुपए की लागत के साथ तय पाया, जबकि EHWT, जिसे DRDO तैयार कर रहा है, को मरबूत करने का मुआहिदा नवल ग्रुप फ्रांस के साथ तकरीबन 877 करोड़ रुपए की लागत के साथ तय पाया। वजारत ने बताया है कि AIP टेक्नोलॉजी DRDO की जानिब से मुल्क में ही तैयार की जा रही है। AIP प्लग की तामीर और इसको मरबूत किए जाने से मुतालिक प्रोजेक्ट से रिवायती आबदोजों की पायदारी में इजाफा होगा और ये आत्मनिर्भर भारत मुहिम में खातिरख्वाह तआवुन का बाइस होगा। वजारत ने मजीद बताया कि इससे तकरीबन 3 लाख अफरादी दिन का रोजगार पैदा होगा। EHWT को इर्तबात भारतीय बहरिया, DRDO और मरबूत किया जाना नवल ग्रुप फ्रांस की एक मुश्तरका कोशिश होगी। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज नई दिल्ली में सेहत और तालीम के शोबे के नुमाइंदों और माहिरीन के साथ पांचवीं बजट 2025-26 से पहले के सलाहों मशवरे की सदारत की। खजाने के सेक्रेटरी, इक्तिसादी उमूर के महकमे के सेक्रेटरियों और मरकजी हुकूमत के चीफ इक्तिसादी मुशीर और वजारत सेहत और स्कूली तालीम के महकमे के सीनियर अफसरान ने इस मीटिंग में शिरकत की। इससे कबल दिन में मोहतरमा सीतारमन ने सनत शोबे के नुमाइंदों के साथ बजट से पहले के सलाहों मशवरे की सदारत की थी। माली बरस 2025-26 के मरकजी बजट के 1 फरवरी 2025 को पार्लियामेंट में पेश किए जाने का इम्कान है। وزیر خزانہ نرملا سیتارمن مسلسل آٹھویں مرتبہ بجٹ پیش کریں گی. بھارت کے مینوفیکچرنگ شعبے نے اس سال نمایاں ترقی کی ہے اور اس نے بھارت کے عالمی پاور ہاؤس بننے کے ہدف کو تقویت بخشی ہے. نریندر مودی حکومت نے پچھلے 10 سال میں معاشی، سماجی اور غیر ملکی پالیسیوں سے متعلق دور رس اسکیموں کو نافذ کیا ہے. ان اقدامات نے بھارت کو ایک عالمی طاقت بن کر ابھرنے میں مدد کی ہے. ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ اس مدت کے دوران ملک نے اپنے آپ کو ایک عالمی مینوفیکچرنگ ہب بنائے رکھا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
پچھلی دہائی میں بھارت کے مینوفیکچرنگ شعبے میں اہم تبدیلی آئی ہے، جس کی وجہ بڑے پیمانے پر میک ان انڈیا اقدام پر عمل ہے. 14 شعبوں میں پیداوار سے مربوط مراعت پی ایل آئی اسکیموں سے 1,28,00,000 روپے سے زیادہ کی سرمایہ کاری حاصل ہوئی ہے اور 8,50,000 ملازمتیں پیدا کی گئیں. ان اقدامات سے الیکٹرانکس، اسٹیل، دوا سازی اور دفاع کے مینوفیکچرنگ شعبے میں ترقی میں تیزی آئی. کھلونوں کی برآمدات میں 239% کا اضافہ ہوا اور موبائل فون بنانے کے شعبے میں 600% کا اضافہ ہوا. سولر پینل اور ونڈ ٹرمائن کی پیداوار میں ترقی سے بھی قابل تجدید توانائی کے لیے بھارت کے بڑھتے ہوئے عزم کی عکاسی ہوتی ہے. دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر الفرید.
آر بی آئی کے 9 مقرر شدہ گورنر سنجے ملہوترا نے 2025 میں بھارت کے اقتصادی منظرنامے کے بارے میں مثبت امکانات کا اظہار کیا ہے. دسمبر 2024 کی مالیاتی استحکام سے متعلق رپورٹ ایف ایس آر کے اپنے پیش لفظ میں جناب ملہوترا نے لکھا ہے کہ افراط زر میں کمی آنے کی توقع ہے، جس سے قوت خرید میں اضافہ ہوگا اور مرکزی بینکوں اقتصادی سرگرمیوں میں تعاون دینے کے لیے مزید لچکداری مل سکے گی. انہوں نے لکھا ہے کہ 2024-25 کے پہلے نصف میں کساد بازاری کا ماحول تھا، تاہم صارفین اور کاروباریوں کا اعتماد مضبوط رہا اور اب کارپوریٹ ادارے مالی مضبوط بنیادوں کے ساتھ 2025 میں داخل ہو رہے ہیں. بھارت کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 700 ارب امریکی ڈالر سے تجاوز کر گئے ہیں، جو ایک اہم سنگ میل ہے، اور اس کے بعد بھارت عالمی سطح پر 4th پوزیشن پر آ گیا ہے. 2014 سے 2024 کے درمیان گزشتہ دہائی میں ملک میں غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری 709 ارب ڈالر سے زیادہ رہی. ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ بھارت عالمی سطح پر مقابلہ جاتی اشاریے میں 2014 میں 71 مقام سے 2018 میں 39 مقام پر آ گیا تھا، جس سے بنیادی ڈھانچے کے فروغ، بازار کے سائز اور اختراعی پیش رفت کا اظہار ہوتا ہے. بھارت آج دنیا کی 5ویں سب سے بڑی معیشت ہے اور ملک 3ری سب سے بڑی معیشت بننے کی طرف گامزن ہے. ملک نے نقل و حمل سے لے کر اختراع، سیکیورٹی اور سائبر سیکیورٹی جیسے شعبوں میں خاطر خواہ ترقی کی ہے. 2015 سے 2018 کے درمیان تجارت کرنے میں آسانی کے اشارے میں 42 مقامات کی چھلانگ سے بھارت سرمایہ کاری دوست ملک بن گیا ہے. 2024 میں بھارت خام اسٹیل کی پیداوار کے معاملے میں چین کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک بن گیا ہے. ملک نے موبائل فون تیار کرنے کے سلسلے میں بھی عالمی سطح پر دوسرا مقام حاصل کیا ہے. بھارت کے تعلیمی شعبے میں بھی نمایاں ترقی ہو رہی ہے اور ملک عالمی تعلیمی درجہ بندی میں خاطر خواہ ترقی کر رہا ہے. یونیورسٹیوں کی کیو ایس عالمی درجہ بندی ایشیا 2025 کی رپورٹ کے مطابق پورے ایشیا کے بہترین 100 اداروں میں بھارت کے 7 ادارے ہیں. حکومت نے آج بتایا کہ اب تک 614,00,000 ہیکٹیئر علاقے میں ربی کی فصلیں بوئی جا چکی ہیں. ایک بیان میں وزارت زراعت نے بتایا کہ 319,00,000 ہیکٹیئر رقبے میں گیہوں کی بوائی کی اطلاع ہے، جو کہ پچھلے سال کی اسی مدت کے دوران 313,00,000 ہیکٹیئر رقبے پر مشتمل تھی. زراعت اور کسانوں کی بہبود کے محکمے نے آج تک ربی کی فصلوں کی بوائی کے رقبے کی پیش رفت رپورٹ جاری کی ہے. 136,00,000 ہیکٹیئر میں دالوں کی بوائی کی گئی ہے. ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमेरिका के साबिक सदर जिमी कार्टर का कल रात 100 साल की उम्र में जॉर्जिया में वाकई उनकी रिहायशगाह पर इंतकाल हो गया। वो अब तक के सबसे ज्यादा उम्र रसीदा सदर और भारत का दौरा करने वाले तीसरे अमेरिकी सदर थे। डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले साबिक सदर जिमी कार्टर 1977 से 1981 तक अमरीका के सदर रहे। सदर की मुद्दत कार के बाद उन्होंने एक गैर मामूली जिंदगी गुजारी। 2002 में उन्हें नोबेल अमन इनाम से नवाजा गया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमरीका के साबिक सदर जिमी कार्टर के इंतकाल पर ताजियत का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने जनाब कार्टर को अजीम नजरिए वाला सियासतदान बताया। उन्होंने मजीद कहा कि जनाब कार्टर ने आलमी अमन और भाईचारे के लिए अनथक काम किया और भारत अमरीका ताल्लुकात को मजबूत बनाने में उनकी खिदमात एक देरपा विरासत का दर्जा रखती हैं। हुकूमत ने मीडिया की उन रिपोर्टों को मुस्तरद कर दिया कि डिजी यात्रा के डेटा को टैक्स चोरी करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। शहरी हवाबाजी की वजारत ने वजाहत की है कि डिजी यात्रा से मुतालिक इस तरह की रिपोर्टें गलत दावों पर मुश्तमिल हैं। उसने मजीद बताया कि डिजी यात्रा मुसाफिर डेटा को भारत के टैक्स हुक्काम के साथ शेयर नहीं किया जा रहा है। आकाशवाणी का खबरों का शोभा 2024 साल जो था, यादें जो हमेशा रहती हैं के उनवान से कल अंग्रेजी में आधे घंटे का एक खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। ये प्रोग्राम रात 8 बजे से 100.1 FM गोल्ड चैनल और इजाफी मीटर्स पर सुना जा सकता है। ये प्रोग्राम न्यूज ऑन AIR.gov.in और आकाशवाणी AIR और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल के हमारे YouTube चैनलों पर भी दस्तियाब होगा। अमरीका ने यूक्रेन के लिए आज इजाफी फौजी और बजट इमदाद के तौर पर तकरीबन 6 अरब डॉलर की रकम का ऐलान किया है। अमरीका के सदर जो बाइडन ने यूक्रेन के लिए इजाफी सिक्योरिटी इमदाद के तौर पर 2.5 अरब डॉलर का ऐलान किया। अमरीकी वजीर खजाना जेनेट येलन ने बताया कि अमरीका ने यूक्रेन के इजाफी बजट मदद में 3.4 अरब डॉलर को दस्तियाब रखा है ताकि यूक्रेन पर रूस के हमलों में आए शिद्दत के दौरान जंग से मुतासिरा मुल्क को अहमियत के हामिल वसाइल मिल सकें। इसमें 1.25 अरब डॉलर की फौजी इमदाद शामिल है जो अमरीकी स्टॉक पायल से दी जाएगी और 1.22 अरब डॉलर की यूक्रेन सलामती इमदादी स्कीम का पैकेज शामिल है। जनाब बाइडन ने कहा कि इस नई इमदाद से यूक्रेन को फौरी तौर पर अपनी सलाहियतों में इजाफा किए जाने की सहूलत मिलेगी ताकि वो मैदान जंग में ज्यादा मौसर तौर पर इन सलाहियतों को इस्तेमाल कर सके। साथ ही हवाई दिफा असलहा और दीगर अहम असलहा जाती निजाम की तवील मुद्दती सप्लाई जारी रहे। क्रिकेट में मेलबोर्न में जारी बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 184 रन से हरा दिया। भारत की पूरी टीम आज टेस्ट सीरीज के आखिरी दिन दूसरी इनिंग्स में 340 रन के हदफ का ताकुब करते हुए 155 रन बनाकर आउट हो गई। भारत की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने सबसे ज्यादा 84 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पैट कमिंस और स्कॉट बोलैंड ने 3-3 विकेट लिए। इस जीत के साथ आलमी टेस्ट चैंपियनशिप WTC फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदें पैदा हो गई हैं। सिडनी में होने वाले अगले टेस्ट में जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया फाइनल में अपनी जगह बना लेगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। इसरो आज रात श्रीहरिकोटा में अपने खलाई स्टेशन से 2 सैटेलाइट छोड़ेगा ताकि मदार में खलाई जहाजों की डॉकिंग और अनडॉकिंग के अमल का मुजाहिरा कर सके। वजारत दिफा ने एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन प्लग की तामीर और इलेक्ट्रॉनिक हैवी वेट टारपेडो से इसके इर्तबात के लिए 2,867 करोड़ रुपए की मालियत के 2 मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने सनत सेहत और तालीमी शोबों के माहिरीन और नुमाइंदों के साथ बजट से पहले की 6वीं मुशावरती मीटिंग की सदारत की। भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इस साल खातिरख्वाह तरक्की हुई जो इसके आलमी पावर हाउस बनने के अमल की जानिब इशारा करती है और अमरीका ने यूक्रेन के लिए फौजी पैकेज समेत तकरीबन 6 अरब डॉलर की इमदाद का ऐलान किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।